नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं अरुण कुमार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष पर कुवैत, कतर और ओमान के नेताओं से बात की। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच उनकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन की निंदा की। भारतीय समुदाय को समर्थन की सराहना की। भारत ने खाड़ी क्षेत्र में अपने 1 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी निकाय ने अमरीका और इसराइल के संयुक्त हमलों में ईरान के नतांज परमाणु केंद्र को हुए नुकसान की पुष्टि की। डुरंड रेखा पर लगातार 5वें दिन भी झड़पें जारी। अफगान सेना ने पाकिस्तान की महत्वपूर्ण चौकियों पर किया कब्जा। और बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में लक्ष्य सेन ने चीन के शी यू ची को हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज कुवैत, कतर और ओमान के नेताओं से बात की। श्री मोदी ने भारतीय प्रवासी समुदाय को उनके निरंतर समर्थन की सराहना की और क्षेत्रीय शांति तथा स्थिरता की शीघ्र बहाली का आह्वान किया। श्री मोदी ने कुवैत के शहजादे शेख सबाह अल खालिद अल हमद अल मुबारक अल सबाह से टेलीफोन पर बात की। श्री मोदी ने इस दौरान कुवैत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन की निंदा की। उन्होंने कहा कि भारत इस कठिन घड़ी में कुवैत के लोगों के साथ है। श्री मोदी ने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की बहाली में संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से बातचीत में कतर के साथ दृढ़ एकजुटता व्यक्त की। उन्होंने कतर की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के किसी भी उल्लंघन की कड़ी निंदा की। श्री मोदी ने ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक से भी बातचीत में पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली के लिए निरंतर राजनयिक संपर्क की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारादिसा नायके ने मध्य पूर्व संघर्ष के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि लंबे समय तक चलने वाला शत्रुता से श्रीलंका सहित वैश्विक और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने आज संसद को संबोधित करते हुए कहा कि तेल और गैस आपूर्ति में व्यवधान से विदेशों में काम करने वाले श्रीलंकाई नागरिकों, पर्यटन, प्रेषण, जहाजरानी और विमानन पर असर पड़ सकता है। भारत ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र में जारी संघर्ष का समाधान संवाद और कूटनीति से करने का आह्वान दोहराया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत इस संघर्ष के शीघ्र समाप्ति के पक्ष में है। उन्होंने दुर्भाग्य से जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया। एक रिपोर्ट।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने जोर देकर कहा कि खाड़ी क्षेत्र में लगभग 1 करोड़ भारतीय नागरिक रहते हैं और काम करते हैं और उनकी सुरक्षा तथा कुशल क्षेम सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि अपने नागरिकों को प्रभावित करने वाले किसी भी प्रतिकूल घटनाक्रम से भारत अछूता नहीं रह सकता। प्रमुख व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखलाएं इस क्षेत्र से होकर गुजरती हैं। इस पर प्रकाश डालते हुए श्री जायसवाल ने रेखांकित किया कि किसी भी बड़े व्यवधान का भारतीय अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। वैश्विक कार्यबल में भारतीय नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए भारत ने वाणिज्यिक जहाजरानी मर्चेंट शिपिंग पर हमलों का कड़ा विरोध किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता में महत्वपूर्ण हित रखने वाले एक निकट पड़ोसी के रूप में ये घटनाक्रम भारत के लिए गहरी चिंता का विषय है। सुपर्णा के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
ईरान पर इसराइल और अमेरिका के संयुक्त सैन्य हमलों के बाद पश्चिम एशिया में संघर्ष और तेज हो गया है। ताजा रिपोर्टों के अनुसार इसराइल तेहरान और बेरूत में सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है। इसराइली रक्षा बल IDF ने कहा कि उसके सैनिक दक्षिणी लेबनान में सक्रिय हैं और वे हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमले कर रहा है। इसराइल ने आरोप लगाया कि हिजबुल्ला ने ईरान की ओर से हमले किए हैं। एक रिपोर्ट।
इजरायली रक्षा बलों ने बेरूत में फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद के कमांडर अबू हमजा रामी के मारे जाने की पुष्टि की है। एक अन्य हमले में इसराइल की सेना ने बेरूत में हिजबुल्ला के खुफिया मुख्यालय के प्रमुख हुसैन मकलत को भी मार गिराया है। इस बीच अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि अमेरिकी सेना ने इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कमान और नियंत्रण केंद्रों, ईरानी वायु रक्षा प्रणालियों, मिसाइल और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों तथा सैन्य हवाई अड्डों को नष्ट कर दिया है। दूसरी ओर ईरान ईरान की सरकारी मीडिया ने बहरीन में एक अमरीकी हवाई अड्डे को नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। इस बीच इस्लामिक गणराज्य में बढ़ते संघर्ष के बीच ईरान के गेराश क्षेत्र में 4.3 की तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप से अभी तक किसी बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने नवीनतम उपग्रह चित्रों की समीक्षा के बाद नतांज स्थित ईरान के परमाणु केंद्र में संरचनात्मक क्षति की पुष्टि की है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी संस्था ने एक बयान में कहा कि विकिरण रिसाव के कोई संकेत नहीं मिले हैं और मुख्य भूमिगत संवर्धन संयंत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। तेहरान में बढ़ते खतरे को देखते हुए ईरान में भारतीय दूतावास ने तेहरान में मौजूद अधिकांश भारतीय विद्यार्थियों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया है। दूतावास ने कहा कि इन लोगों के परिवहन, भोजन और आवास की व्यवस्था कर दी गई है। दूतावास का प्रस्ताव अस्वीकार करने वाले कुछ विद्यार्थी ही तेहरान में बचे हैं। दूतावास ने ईरान में मौजूद अन्य भारतीय विद्यार्थियों और भारतीय नागरिकों से जहां हैं वहीं रहने, यथासंभव घर के अंदर रहने और खिड़कियों से दूर रहने का आग्रह किया है। उनसे सावधानी बरतने और विरोध प्रदर्शनों वाले क्षेत्रों से दूर रहने को कहा गया है। ईरान में भारतीय दूतावास द्वारा आपातकालीन संपर्क नंबर जारी किए गए हैं। ये नंबर हैं 9891281115, 9891281019 और 109। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर लगातार पांचवें दिन भी झड़पें जारी हैं। इस बीच अफगानिस्तान की सेना ने सीमावर्ती क्षेत्रों में पाकिस्तान की कई प्रमुख सैन्य चौकियों पर कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमलों के बाद अफगानी सेना ने पाकिस्तानी ठिकानों पर जवाबी हमले किए। अफगानिस्तान ने दावा किया कि उसने कंधार प्रांत के स्पिन बोल्दक जिले में 3 और अली शेर जिले में 2 पाकिस्तानी चौकियों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। दोनों देशों के बीच 21 और 22 फरवरी को पाकिस्तानी हमलों के बाद संघर्ष तेज हो गया है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर सैन्य बल के इस्तेमाल का आरोप लगा रहे हैं। क्षेत्र में खुला युद्ध जारी है। बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने दावा किया है कि उसने वरिष्ठ कमांड परिषद के आदेश पर ऑपरेशन हराफ 2 के दौरान पकड़े गए 7 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार BLA ने कहा कि पाकिस्तानी सेना की नियमित इकाइयों से संबंधित 7 लोगों को बलूच राष्ट्रीय न्यायालय ने जबरन गायब किए जाने, नागरिकों के खिलाफ दुर्व्यवहार और अन्य युद्ध अपराधों सहित कई अपराधों में संलिप्तता के लिए दोषी ठहराया था। नेपाल में 5 मार्च को 1,80,00,000 से अधिक नेपाली नागरिक अपने नए नेता का चुनाव करने के लिए मतदान करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि चुनाव की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और नेपाल निर्वाचन आयोग निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए आचार संहिता का सख्ती से पालन कर रही है।
नेपाल में आगामी 5 मार्च को होने वाला आम चुनाव ऐतिहासिक होगा क्योंकि इसमें 80,00,000 जेंजी युवा पहली बार मतदान करेंगे। मतदान का समय सुबह 7 बजे से 5 बजे तक होगा। मतदाता अपना पहचान पत्र दिखाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। 5 मार्च को होने वाले चुनाव में निर्दलीय समेत 65 राजनीतिक दलों के 3,406 उम्मीदवार मैदान में हैं। श्वेता सिंह, आकाशवाणी समाचार, काठमांडू।
बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स में आज लक्ष्य सेन ने शी यूची को हराकर अगले दौर में प्रवेश किया। लक्ष्य ने शी यूची को 23-21, 19-21, 21-17 से मात दी। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने मिक्स्ड डबल्स में हु पांगरॉन और चेंग सू यिन को 21-17, 21-19 से हराया। वहीं महिला सिंगल्स में येन युफेई ने मालविका बंसोड़ को 21-11, 21-6 से हराया। उन्नति हुडा का सामना आज पोनपावी चोंचुवांग से होगा। महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला साइका हिरोटा और अयोका सुकरामोतो से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष पर कुवैत, कतर और ओमान के नेताओं से बात की। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच उनकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के उल्लंघन की निंदा की। भारतीय समुदाय को समर्थन की सराहना की। भारत ने खाड़ी क्षेत्र में अपने 1 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। संयुक्त राष्ट्र के परमाणु निगरानी निकाय ने अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों में ईरान के दतांज परमाणु केंद्र को हुए नुकसान की पुष्टि की। डूरंड रेखा पर लगातार पांचवें दिन भी झड़पें जारी। अफगान सेना ने पाकिस्तान की महत्वपूर्ण चौकियों पर किया कब्जा और बर्मिंघम में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में लक्ष्य सेन ने चीन के शी यूची को हराया। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।